शुरू करें वर्स 39 से। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं वर्स 39 में, तो ये जो पूरा संसार है ये मुझ आत्मन में ही नजर आ रहा है, और ज्ञानी पुरुष जानता है कि आत्मन, जैसे कि हमने देखा था पिछली बार कि जो स्पेस होती है, जो आकाश है, यहाँ पे कितनी भी हम गंदगी मचा लें लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता है ना, स्पेस कभी गंदी नहीं होती, हवा दूषित हो जाएगी, वो जो धरती है जहाँ पे अगर आपने गंदगी रखी है वो दूषित हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्पेस देखोगे स्पेस कभी गंदी नहीं होती, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सूरज की किरणें हैं जो आ रही हैं, एक सूरज की किरण गंगा पे पड़ रही है और एक कीचड़ पर पड़ रही है, लेकिन क्या सूरज की किरण गंदी हो जाती है क्योंकि वो कीचड़ पे पड़ रही है, या वो ज्यादा साफ हो जाती है क्योंकि वो गंगा पे पड़ रही है? नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही आत्मन, जिसमें ये पूरा संसार नजर आ रहा है, ये कभी भी दूषित नहीं होता, ये हमेशा स्वच्छ और प्योर ही रहता है, अनब्लेमिश्ड एज स्पेस। सेल्फ इज सिंगुलर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आत्मन एक ही है, फिर वही बात, एक ही आत्मन है, एक ही ब्रह्मन है, जैसे गुरु नानक देव बोलते हैं एक ओंकार। और जितना भी संसार का पूरा जो ड्रामा है ये सारा किस में नजर आता है, ये उस आत्मन में ही नजर आ रहा है, जैसे कि स्वप्न देखने वाले के मन में पूरा स्वप्न जगत नजर आता है ना। हमेशा हम इस चीज की उपमा देते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, अगर स्वप्न ना होते तो शायद समझना बहुत मुश्किल हो जाता बिना ड्रीम्स के इस चीज को, लेकिन हम ये जान सकते हैं है ना कि मेरा खुद का ही ड्रीम होता है, एक ही इंसान तो ड्रीम देख रहा है, आपका मन, आप वहां पे तो आपको पता है ना आप सिंगुलर हो, लेकिन जब ड्रीम देखते हो उसमें कितने सारे लोग, कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीजें, बिल्डिंग, सामान, हर चीज नजर आती है, पर है किसमें, एक ही उसमें। और फिर जब आप सुबह उठते हो तो क्या पता पड़ता है, सब झूठ था, है ना, उठते ही पता पड़ जाता है कि सब झूठ था। बिल्कुल ऐसे ही मुझ आत्मन में ये पूरा संसार नजर आ रहा है, और जैसे ही अवेकनिंग, इसको इसलिए हम अवेकनिंग भी बोलते हैं कि जैसे ही जगोगे तो रियलाइज होगा कि ये पूरा का पूरा झूठ ही है। द विजिबल वर्ल्ड इज अ ड्रीम सीन थ्रू द लेंस ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। द यूनिवर्सल और मैक्रोकॉस्मिक काउंटर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड इज नोन एज माया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जैसे हमें एक इंडिविजुअल माइंड को एक वर्ल्ड नजर आ रहा है, जब ये यूनिवर्सल माइंड को जो वर्ल्ड नजर आ रहा है इसी को हम माया बोलते हैं, मतलब जो पूरा का पूरा दृश्य जो चल रहा है, जो हर किसी को नजर आ रहा है। और फिर अगर हम उसमें अगर माया को बोले कि वो एक जंगल है, तो आपका जो एक इंडिविजुअल का, एक जीव का जो मन है वो उसमें सिर्फ एक पेड़ है उस जंगल में, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने जंगल और पेड़ से उसको किया गया, मतलब माया जो है वो पूरी जंगल है, पूरी की पूरी, और आप जो हो, आप जीव, उसमें एक पेड़ हो। जैसे आपके मन ने, इंडिविजुअल माइंड ने एक स्वप्न बनाया रात में एक अकेले मन ने, ऐसे ही माया ने ये पूरा का पूरा संसार बनाया है, ये पूरा जो भी जगत नजर आ रहा है ये माया के माइंड में क्रिएटेड है। द क्रिएटर ऑफ दिस विजिबल वर्ल्ड इज माया। फिर इन्होंने आके एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम अपने शरीर को बोलते हैं ये मेरा शरीर है ना, और इसको हम एक यूनिट मानते हैं, है कि नहीं, मैं बोलूंगी ये वन बॉडी है, लेकिन अब इन्होंने बोला इन रियलिटी इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ट्रिलियंस, नॉट इवन मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, है ना। इनफैक्ट अ रीसेंट स्टडी सेज दैट द नंबर ऑफ माइक्रोब्स में वेल मैच द नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू इमेजिन, जितने बॉडी में आपके सेल्स हैं उतने ही माइक्रोब्स हैं। नाउ इमेजिन इफ एवरी माइक्रोब क्लेम्ड टू बी द ओनर ऑफ दिस बॉडी। हो सकता है ना वो हर कोई बोले ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा शरीर है, आप बोल रहे हो मेरा शरीर है, और वो ट्रिलियंस खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो मेरा शरीर है, किसका शरीर है ये? विल यू बी एबल टू फाइट द ट्रिलियंस ऑफ क्लेम्स? नहीं कर सकते ना हम, है ना। तो ऐसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो हम बात करते हैं मैक्रोकॉस्म की, वो भी एक ही शरीर है ना, और उस शरीर में हम सारे एक 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 वो माइक्रोब हैं, ओके, जिसको हम अलग 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 मैं मान रहे हैं। तो वो क्या, वही जो होता है ना कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है ना, एज अबव सो बिलो, जो बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। ये जो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, इनको मिला के हम बोल सकते हैं कि ये भी माया है, ये पूरा का पूरा माया ही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जानने की क्या है कि ये जो हमें अलग अलग शरीर नजर आ रहे हैं, अभी हम अगर अपने कमरे में देखें, मुझे एक शरीर नजर आ रहा है, बेड नजर आ रहा है, दीवारें नजर आ रही है, पर ये एक ही बॉडी है। और ये जो स्पेस है, देखो ये हमें स्पेस से हमें हर चीज अलग अलग नजर आती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ स्पेस दैट वी सी डिफरेंटली। सोचो अगर स्पेस निकाल दी जाए, एक मिनट के लिए इमेजिन करो, एक भगवान ने वैक्यूम क्लीनर लिया और सारी स्पेस को हटा दिया वहां से, तो हम सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, है कि नहीं? सारा का सारा, ऑल द मैटर, देन इट विल बिकम वन यूनिट, है कि नहीं? फिर कहना कैसे मुश्किल होगा, सोचो कितनी बुरी तरह हम एक दूसरे से जकड़े हुए होंगे, फिर हम क्या कह पाएंगे कि मैं अलग हूं, फिर तो हम एक हो जाएंगे, है ना? अब क्या है, क्योंकि स्पेस है, इससे इल्यूजन ऐसा हो रहा है कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जो स्पेस है वो भी एक्चुअली मैटर है। प्लीज रिमेंबर दिस, स्पेस इज ऑल्सो मैटर। स्पेस क्योंकि वो बहुत मतलब सूक्ष्म मैटर है, इसलिए हमें वो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। एक और चीज देखो, आपने देखा जब सनलाइट आती है एकदम से, तो हम उसमें बहुत कुछ वो नजर आते हैं, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, है ना? आप कमरे में जैसे पर्दा हटाते हो, खूब तेज सन की रोशनी आती है, तो यू कैन सी कि इवन जो स्पेस है वो खाली नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ है, मैटर है उसके अंदर, है ना? तो इस चीज को ध्यान देना है। तो ये एक ही है। हाँ, अब इन्होंने आगे नेक्स्ट उसमें क्या बताया है कि एक तो हम संसार देखते हैं जो बाहर है, जो चीजों का बना है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स है, जहां पे बहुत सारा मैटर है, लेकिन एक संसार हम सबके अंदर भी चल रहा है माइंड में, है ना? अगर सपोज कमरे में 5 लोग बैठे हैं, तो एक तो उनका कॉमन संसार हो गया कि वो 5 उस एक कमरे में उनका उनको सबको एक ही कमरा नजर आ रहा है, उसमें भी हो सकता है सबको अलग अलग चीजें नजर आए, किसी को कर्टेंस क्या नजर आए, किसी को अलमारी नजर आए, है ना? किसका ध्यान किस चीज पे जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो 5 के माइंड हैं, उनमें भी एक अलग अलग संसार चल रहा है। हम जैसे इस समय भी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन आपको सुनते हुए जरूरी नहीं है कि आपका पूरा ध्यान जो मैं बोल रही हूँ उसी पे ही है। हर एक का ध्यान में हो सकता है थोड़ा सा नीचे में कुछ और चल रहा हो, किसी को लग रहा हो अरे कल ये होने वाला है, किसी को लग रहा हो मुझे खाने में क्या बनाना है, मे बी समवेयर समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। तो हम एक एक इंसान के अंदर भी एक अलग अलग संसार है, ओके? तो ये बहुत लंबा प्रॉब्लम, और ये सब क्या है, ये सब का सब माया है। ऑल्दो इट इज वन, इट इज ऑल माया। फिर वो कहती हैं, जैसे जब हम बोलते हैं कि मेरा संसार, हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपल उन्होंने बताया। तो मेरा संसार का क्या मतलब है, आपके संसार में क्या हर कोई आता है? यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, जब हम संसार बोलते हैं, नहीं ना, कितने लोग आते होंगे, 20, 50, 100, 150, एक्चुअली गिनो तो बहुत थोड़े से, और भी कम, है ना? और आप बोलोगे बस ये मेरा संसार है, है ना? तो हर एक का संसार एक होते हुए भी सबने अपने अलग 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 संसार बनाया हुआ है, और हो सकता है आपने जिसको अपने संसार में इंक्लूड किया हो, उसने आपको अपने संसार में नहीं इंक्लूड किया, ऐसा भी हो सकता है, है ना? तो कितने सारे संसार हैं, तो एवरीथिंग इज सब्जेक्ट, सारा का सारा ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ में आया पॉइंट, किसी को यहाँ पे कोई शक? फिर वो कहते हैं कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं, असल में कोई नहीं जानता, जिनको हम सोचते हैं ना कि ये हमें जानते हैं, वो भी हमें नहीं जानते, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से ही दूसरे को जानता है। जरूरी नहीं है कि जो वो है आप उसको जानते हो, और इंसान अपने आप को खुद को जानता है ये भी कोई भरोसा नहीं, वो भी बदलता रहता है, है ना? वो भी हम आज सोचते हैं नहीं मैं तो बहुत समझदार हूँ, कल कुछ हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे नहीं मैं तो बड़ी बेवकूफ हूँ, है ना? आप खुद को भी जानते हो, वो भी बदलता रहता है। ऐसे दूसरों के बारे में भी हम हमेशा जजमेंट करते रहते हैं। तो ये सब माया है, ये सब का सब, ये सब चेंज होता जा रहा है, और हम इसी के अंदर फंसे हुए हैं, है ना? इसी में ही हम घुसे रहते हैं पूरा टाइम, और इसी से हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि जो तुम जिसको अपना संसार बोलते हो, वो सिर्फ तुम्हारे मन का संसार है, तुम्हारा संसार है, है ना? There are zillions of people inhabiting this planet which are not part of your world. कितने लोग रोज किसके साथ हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ हमने बाउंड्री डिफाइन की है कि मेरे संसार में ये लोग हैं, उनको जरा सा भी कुछ होता है तो हमारा लगता है हमारे संसार में हलचल मची हुई है। और ये सारा कुछ जो हम बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये कहाँ से आया है? ये हमारे माइंड से ही आया है, है ना? हमारे माइंड में ही तो है, हमारी मेमोरी में ही तो है जो हमने स्टोर किया हुआ है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और तो कहीं से नहीं आ रही, है ना? अब वो कहते हैं शंकराचार्य इज सेइंग द सेम थिंग, दिस एंटायर वर्ल्ड हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द माइंड एंड आई द आत्मन एम द सबस्ट्रैटम एंड द नोअर ऑफ दिस माइंड। ठीक है, देखो बहुत अच्छी बात है। वो क्या कह रहे हैं, जैसे तुम्हारे मन ने तुम्हारा एक संसार बनाया है, तुम बोलते हो ये मेरा हस्बैंड, बच्चे, ये मेरा सामान, मैं, ऐसे ही ये जो पूरा संसार है, पूरा का पूरा, ठीक है, ये भी माइंड से ही क्रिएटेड है। ये कौन सा माइंड है? ये यूनिवर्सल माइंड हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द माइंड। इन्होंने सिर्फ माइंड बोला है पर हम इसको यूनिवर्सल माइंड भी बोलते हैं। और वो यूनिवर्सल माइंड किस में एग्जिस्ट करता है? आई द सेल्फ में, एस विद द सेल्फ विद द कैपिटल एस, उस सेल्फ में। और वो सेल्फ ही इस माइंड को जानने वाला है। देखो माइंड सेल्फ को नहीं जान सकता, सेल्फ माइंड को जान सकता है। ये बात समझ में आ गई? वैसे तो रेपिटिशन ही है, जस्ट वर्ड का अदला बदली है और कुछ नहीं है, चीज वही की वही है। The sky, the stars, the galaxies, Ram, Krishna, Guru, how do you see all this? Through the mind. That is why in Yog Vashisht, Vashisht says to Ram, O Ram, your own chit is the creator of your world. And no sooner does the mind enters deep sleep, the whole world simply disappears. ये बात है कि नहीं है? कि जैसे ही हम सोते हैं पूरा संसार गायब हो जाता है। सोने के बाद आपको ध्यान रहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे कौन है। इनफैक्ट जो सपना शुरू होता है सुबह उठ के, मुझे कितनी बार इतनी हैरानी होती है कि दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, राइट? एक बार भी दिमाग क्वेश्चन नहीं करता। वो तो पता लगा ना कि बुद्धि सो रही होती है, बुद्धि उस टाइम एक्टिवेटेड नहीं होती है। तो बुद्ध इसलिए कौन बताएगा आपको, क्यों ख्याल नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कौन कौन लोग मिल जाते हैं, कभी जिनकी डेथ हो चुकी है वो नज़र आ रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, कभी तो स्कूल में एग्जाम दे रहे होते हैं, है ना? ये याद नहीं आता कि ये चल क्या रहा है ना? तो ये सारा का सारा मतलब सोते ही सब समाप्त, स्वप्न में भी याद नहीं रहता, सोते हुए भी याद नहीं रहता। तो इसी से हमें पता लग जाना चाहिए कि ये भी कितना बड़ा एक झूठ है, कितना बड़ा एक प्रोजेक्शन है जो माइंड ने क्रिएट की हुई है। और ये सोते ही ये प्रोजेक्शन ख़त्म हो जाती है, और जब आप जगते हो तो क्यों वो वापस चल पड़ता है, क्यों रियल लगता है? बिकॉज ऑफ द मेमोरी, आपकी मेमोरी होती है इसलिए आपके वो कंटिन्यूएशन में नज़र आता है और वो रियल लगने लगता है कि ये बिल्कुल रियल है। द होल वर्ल्ड, गुरु तेग बहादुर सेज, द होल वर्ल्ड इज नो मोर देन अ ड्रीम। It appears real when the dream is on, but appears false on waking. This entire world is a dream seen through open eyes. The day you experience inner awakening, the illusory nature of this world will become clear to you. Eventually, तो हमें यही जानना है कि हम इस स्वप्न से भी जग जाएं, है ना? जागने की बात है ना पूरी की पूरी, और कुछ भी नहीं है, पाना कुछ नहीं है, वो already मिला हुआ है। जब आप सोए हुए होते हो तो आपको कहीं जाके कुछ अचीव थोड़ी करना है ये जानने के लिए कि आप कौन हो, बस सिर्फ जगना होता है। जहाँ आप नींद से जगे तो वापस हो जिसको आपने मैं माना हुआ है कि नहीं, जैसे ही स्वप्न से जगे तो रियलिटी में आ गए, सो कॉल्ड रिलेटिव रियलिटी में। और ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं, ये रियलिटी भी उस स्वप्न के जैसी ही है, यहाँ पर भी जग जाओ, यहाँ पर जग जाओ और खुली आँखों से रियलाइज कर लो कि ये भी उतना ही बड़ा स्वप्न है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ, जैसे बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि पास्ट लाइव्स, राइट? अब देखो जब आप सपने में होते हो तो आपको कभी याद आता है कि आपने कल कौन सा सपना देखा था, परसों कौन सा सपना देखा था? ये भी नहीं याद होता कि आप तो सोए हुए हो तो सपने तो याद होंगे ही नहीं, है ना? लेकिन जब आप उठ जाते हो तो आपको अपना सपना याद आ जाता है ना? और आपको हो सकता है आपने 2 महीने पहले सपना देखा हो, वो भी याद हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो सकता है आपने 2 साल पहले कोई सपना देखा हो, Are you getting my point? आपने जितने भी सपने देखे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही, अगर सपोज आपने याद रखे हैं उन सपनों को, तो आपको 10-12 सपने याद आ सकते हैं ना, कि मैंने कल रात को ये देखा था, थोड़े दिन पहले मुझे ये सपना आया था, उससे पहले ये सपना आया था. तो मतलब जागने के बाद आपको वो सब पुराने स्वप्न भी याद है, लेकिन क्या उनका कोई मोल है? आर दे इम्पॉर्टेंट? डू यू वॉन्ट टू रिमेम्बर एंड डू यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग विद देम? नो, है ना. ऐसे ही हम जब इस स्वप्न में हैं तो हमें लगता है अरे पास्ट लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे जानना है मेरी पास्ट लाइफ में क्या हुआ, मैंने क्या किया. जब जगोगे और आपको पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ्स नजर आने लगेंगी, वो बिल्कुल स्वप्न जैसी. जब ये ही स्वप्न हो गया तो वो पास्ट लाइफ्स भी स्वप्न हो गई, तो उनका भी सारा का सारा मूल खत्म हो जाता है, दे लूज वैल्यू. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे स्वप्न की वैल्यू खत्म हो जाती है जागने के बाद, तो हमारी सारी लाइव्स और पास्ट लाइव्स की वैल्यू भी जगने के बाद समाप्त हो जाती है. अगर आपको पता भी लग जाए तो भी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जानो या ना जानो. अब ये जो हमें संसार नजर आ रहा है, इसके दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये संसार इतना हमारे ऊपर भासता है या इतना हमें अट्रैक्ट करता है. वो क्या है? फॉर्म एंड नेम, है ना. क्या बोलते हैं? नाम और रूप. नाम और रूप ही है ना, नाम और रूप से हमें पूरा का पूरा. और नाम और रूप कैसे नजर आ रहे हैं? इन आंखों की वजह से, क्योंकि हमारे पास आंखें हैं. ये आंखें किस चीज को कैच करती हैं? नाम और रूप को. या एक और हम बोलते हैं, रूप में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है शेप और एक होता है कलर. रूप रंग और क्या बोलेंगे, फॉर्म. शेप को क्या बोलते हैं हिंदी में? साकार या जो भी उसकी है. तो वर्ल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ सम फॉर्म्स एंड सम नेम्स. ऑल द सीन ऑब्जेक्ट्स आर फाइनाइट, बट द सीयर इज द सेंशिएंट सेल्फ विच इज इनफाइनाइट. और जितने भी ये नाम रूप नजर आते हैं, ये इनका एक फाइनाइट है, इनकी लाइफ है, ये है और खत्म हो जाते हैं, है ना. मतलब इनकी एक बिगनिंग है और एक एंड है ऑब्जेक्ट्स की बाय देमसेल्फ्स, लेकिन जो इनको देखने वाला है वो इनफाइनाइट है. तो जो भी तुम देख रहे हो, हर एक का नाम है और रूप है, और ये पूरा का पूरा ड्रामा नाम और रूप का ही है, विद इट सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम क्या मतलब? इसको हम प्लेग्राउंड बोल सकते हैं, बैकग्राउंड बोल सकते हैं, या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं पेंटिंग का. देखो जो कैनवस होता है, कैनवस तो एक है पूरा का पूरा वाइट, है ना. उसके ऊपर पेंटिंग में हो सकता है कहीं पे फूल है, कहीं पे पत्ती है, कहीं पे कीचड़ भी हो सकता है, कहीं पे घर है, कहीं पे सफेद है, लाल है, काला है. तो अलग 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 चीजें पेंटिंग के ऊपर नजर आ रही हैं, लेकिन उसके नीचे जाओ तो कैनवस एक ही है, है ना. वैसे तो पेंटिंग भी देखो, अगर हम पुराना वाला लें एग्जांपल, पेंटिंग भी एक ही है, इजंट इट? इट इज जस्ट वन पिक्चर. ओनली व्हेन वी डिवाइड एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट डिफरेंटली, देन वी से अच्छा ये फूल है, ये पत्ती है, ये टहनी है, पर है तो एक ही. इट इज ओनली जस्ट वन पेंटिंग. तो ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है? यहाँ पे इन्होंने सत्य की परिभाषा दी है. It can be defined as that which never changes. वो सत्य है, क्योंकि बाकी सब जो है वो तो बदलता ही जा रहा है. तो सच क्या हुआ? वो सिर्फ सेल्फ हुआ. And that which exists eternally, है ना, जो हमेशा है. Eternally मतलब कभी भी जाता नहीं है, था, है और रहेगा. On the contrary, the world of names and forms is finite and ephemeral. Name and form बदल रहे हैं. अब यहाँ पे confuse मत होना. वो जो शिवानी का पहले question था कि वो बदल भी रहे हैं, finite भी हैं, लेकिन वो हमेशा हैं. इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे paradox है. देखो, जैसे ये जो body है, ये जो मुनि का शरीर नजर आ रहा है, ये आज है कल नहीं होगा, है ना? लेकिन कोई और शरीर होगा. तो मुनि का शरीर फाइनाइट है, लेकिन शरीर हमेशा रहेंगे, कोई ना कोई शरीर, ये नहीं तो कोई और रहेगा, है ना. तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है. द वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज फाइनाइट एंड एफेमरल. द सीयर आई विटनेसेस द फॉर्म्स एंड नेम्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड इंटेलेक्ट, बट माइंड इंटेलेक्ट इज इनर्ट. यहाँ पे फिर वही बात बता रहे हैं कि मन और बुद्धि, जिसको हम सोचते हैं कि ये चैतन्य है, वो भी जड़ है. शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, हमारा हृदय भी जड़ है, हर चीज जड़ है. इन सब को चैतन्य कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ उस सेल्फ से. वो जो मैं हूँ, वो जो आप हो, वही जो रियलिटी है, वही जो सत्य है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ. तो जब मैं देखने वाला हूँ तो मन और बुद्धि भी दृश्य हैं, मैं दृष्टा हूँ और वो दृश्य हैं. तो दृश्य का मतलब ये नहीं कि जो अब मुझे बाहर ये दीवारें नजर आ रही हैं, ये शरीर भी दृश्य है, मेरा मन भी दृश्य है, मेरी बुद्धि भी दृश्य है, मेरी भावनाएं भी दृश्य है, मेरे विचार भी दृश्य हैं, सब कुछ दृश्य में आता है. दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स. ओके, द एक्चुअल टर्म विच इज यूज्ड इज दृश्य या फिर ऑब्जेक्ट्स. तो हम जनरली हम क्या सोचते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब सपोज एक ये जैसे फोन, इट इज एन ऑब्जेक्ट, और बुक इज एन ऑब्जेक्ट. हियर व्हाट दे आर सेइंग, एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, जिस भी चीज का आप अनुभव कर सकते हैं वो एक ऑब्जेक्ट ही है. द सेल्फ विटनेसेस द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द बॉडी. देखो अब ये बताते हैं कि आप कभी भी ये अनुभव नहीं कर सकते कि मैं मर गया, बिकॉज यू कैनॉट डाई, बिकॉज हु आर यू, यू आर द सेल्फ. और जो सेल्फ है वो अगर आपने साधना करी है, आप समझ गए, मतलब अगर वही ऑब्वियसली मन बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट से ही देखा जाएगा, तो आप कैसे जान सकते हो, यू बिकम द विटनेस ऑफ द डेथ ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो बर्थ ऑफ द बॉडी. आप शरीर को मरते हुए भी देख सकते हो और उसका जन्म लेते हुए भी देख सकते हो. एक सिकंदर के टाइम में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था ना, तो उन्होंने किसी के बारे में, उनके वहाँ पे कोई गुरु थे, तो उन्होंने बोला था कि तुम जा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ इंडिया का था, या मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, यहाँ पे इंडिया आया था अलेक्जेंडर, आया था ना, हाँ, तो यहीं के गुरु थे. तो उन्होंने बोला था कि भारत में कोई ऐसे गुरु हैं तो तुम उनसे ज़रूर मिल के आना. मैं उनका नाम वाम भूल गई हूँ अभी. तो उन्होंने ऑब्वियसली, सिकंदर तो अपने आप को फिर सिकंदर था समझता था, तो उसने अपने पहले तो अर्दली भेजे कि ऐसे ऐसे गुरु हैं उनको मेरे उसमें बुला के लाओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. तो ऑब्वियसली गुरु को तो कुछ लेना देना नहीं है, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा. तो उसके बाद उनका मंत्री गया उनको बुलाने के लिए कि वो सिकंदर हैं, इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने आपको बुलाया है. उन्होंने बोला होगा राजा, मुझे उससे कुछ लेना देना है, मैं तो नहीं आऊँगा, अगर उसको मिलना है तो वही आए. तो उसके बाद बट सिकंदर वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि ऐसे कैसे उन्होंने मना कर दिया कि सुनो सिकंदर को मिलने के लिए तो लोग इतना पीछे पड़े हैं, पागल हैं, और यहाँ पे कोई है, मैं बुला रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं. तो सिकंदर ही उनको फिर मिलने के लिए आया. पहले तो जब वो आके खड़ा हुआ उसने बोला कि मैं सिकंदर हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ. तो उन्होंने पहले बोला जरा साइड में हट, बिल्कुल तूने मेरी धूप रोक दी है, मैं जहाँ पे लेटा हुआ हूँ ना धूप आ रही थी इतनी अच्छी मेरे बदन पे, एंड पूरे नंग धड़ंग ही वॉज जस्ट लाइंग कम्प्लीटली नेकेड इन द फॉरेस्ट. उन्होंने बोला हट यहाँ से, तो वो भी साइड में हुआ, वो हुआ करके. तो उसने बोला कि देखो अगर तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारा सर कटवा सकता हूँ. तो उसने बोला हाँ कटवा दो, कहते तुमको कोई चिंता नहीं है. कहते नहीं, तुम देखोगे कि मैं मर रहा हूँ, मैं भी देखूंगा कि ये मर रहा है. ओके, कि सिर्फ तुम ही नहीं देखोगे मरते हुए, मैं भी देखूंगा. मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता पा रही हूँ, पर कुछ ऐसा था. तो बेसिकली व्हाट इज, और ये और भी बहुत सारे जेन मास्टर्स की स्टोरीज में भी बहुत उसमें है, स्पेशली विद द किंग एंड अ मंक. कि अगर किंग बोलता है मैं मरवाऊंगा या वो करते हैं, उनको ये होता है हाँ मरवा दो, क्योंकि मैं भी ये देखने वाला हूँ, इवन आई एम गोइंग टू विटनेस माई डेथ. ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ वो बता रहे हैं कि जो सेल्फ है वो विटनेस करता है. जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब समझ जाते हो, तो यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ आई एम डेड, बिकॉज द वन हु एक्सपीरियंसेस डेथ हैज हैपेंड, द ऑब्जर्वर हैज टू बी सेपरेट टू नो दैट. तो इसी से पता लगता है कि जो मरने वाला है वो उस शरीर से अलग है, तभी तो वो देख पाएगा उसको मरते हुए, उस शरीर. The observer that knows, that witnesses the drama of birth, growth and death, that observer is distinct from the observed entity. अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ क्या याद रखनी है, जैसे हम एक तो बोलते हैं हमें बार बार साधना करनी है, याद रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, ये शरीर ये कर रहा है, मन ये कर रहा है, बताया भी गया है. और एक और वो बोलते हैं कि असल में तुम ऑलरेडी अलग ही हो, तुम अलग ही हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग करना है, इट्स जस्ट कि तुम भ्रांति से, भूल हो गई है, उसमें अपने आप को ये मानने लग गए हो, तुम अलग ऑलरेडी हो. ओके, जैसे कि सपोज आप सब सोचो जैसे पैदा हुए हो, सपोज कल को जो साइंटिस्ट हैं कोई इस तरह का कपड़ा बना दें कि आपको ना बचपन में पैदा होते ही वो कपड़ा पहना दिया जाए, और जैसे जैसे आपकी बॉडी बड़ी होती जाएगी वो कपड़ा भी बड़ा होता जाएगा, आपने कभी उतारा ही नहीं उस कपड़े को, है ना, तो आप उस कपड़े को मैं ही मानने लगोगे ना, यही लगने लगेगा कि ये मैं ही हूँ, है ना, जबकि वो कपड़ा आप नहीं हो, वो आपको सिर्फ ऊपर पहनाया गया है. तो बिल्कुल ऐसे ही गलती से, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है हमने मान लिया है, पर हम अलग ही हैं. इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर. फिर वो कहते हैं दो तरह का जानना होता है, एक जानना होता है इंटेलेक्ट से, है ना, और उस जानने को हम बोलते हैं मानना, उसको जानना नहीं बोलते, है ना, जो हमने सिर्फ बुद्धि से जाना है, और एक जो जानना होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेलेक्ट, इट इज़ द नोइंग ऑफ द सेल्फ. और उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो यहाँ पे बता रहे हैं, देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ नोइंग. और वैसे भी जो बुद्धि जानती है वो भी आत्मा की वजह से ही जानती, अगर आप मान भी रहे हो, चलो अगर हम मानने की बात करें, वो भी कैसे हो रहा है, मानने वाला एक्शन भी सेल्फ की वजह से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बुद्धि डिपेंडेंट है सेल्फ पे, और फिर सेल्फ ही सेल्फ खुद को जानता है, वो है जानना. जब बुद्धि सेल्फ को मान रही है वो अलग टाइप का जानना है, और जब सेल्फ खुद से सेल्फ को जान रहा है वो है असली जानना. तो जो उस सेल्फ को जान जाता है, जो उस ग्राउंड को जान जाता है, जो उस कैनवस को जान जाता है, उसके लिए जो बाकी ऊपर ड्रामा जो भी चल रहा है वो उनको पकड़ता नहीं है. द वाइज पर्सन डज नॉट होल्ड ऑन टू द इल्यूजरी ऑब्जेक्ट्स, इट बिकम्स फ्री ऑफ ऑल अटैचमेंट्स एंड ईगोटिज्म. वो सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ होती है, सिर्फ उस आत्मन में, ब्रह्मन में, इस शरीर और ऑब्जेक्ट से कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती. तो वो क्या बता रहे हैं आगे कि हमने अनजाने में अज्ञानवश किसको पकड़ा हुआ है, जो बदल रहा है, यही हमारे दुख का कारण है ना, कि जो हमेशा बदल रहा है हम उसको पकड़ के बैठे हैं, जैसे कि शरीर, है ना, और शरीर तो बदल रहा है, वैसे ही बदल रहा है शरीर, बीमार भी होगा, कुछ होगा भी, ना भी रहे शरीर, लेकिन अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमें दुख होना ही होना है. कोई भी चीज़, अगर किसी के पास, किसी को पैसा मिला, कोई पैसा पकड़ के बैठा हुआ है, वो पैसा भी आज है कल नहीं रहेगा. आपने कोई रिश्ता पकड़ा हुआ है, वो रिश्ता भी आज है कल नहीं रहेगा, कब किसका मन बदल जाए, है ना, कुछ कह तो नहीं सकते हैं, सब कुछ यहाँ बदलने वाला है. तो यही दुख का कारण है. हम क्यों सफ़र करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ना बदले वो वैसा ही रहे, मैं हमेशा जवान ही रहूं, 18 साल की ही रहूं, है ना, सुंदर ही रहूं, कोई बीमारी भी ना हो, मन हमेशा खुश ही रहे, कभी दुख हो ही ना इसको, मेरा हस्बैंड अगर मुझे बहुत पैम्पर करता है तो ऐसा ही रहे, बदले ना, मेरे बच्चे अगर मेरे को प्यार करते हैं तो ऐसे ही रहें, पर ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कुछ भी ऐसा नहीं होता. तो यही हमारे दुखों का कारण है. लेकिन अगर आप इसी बात को यहाँ नहीं दिया है, मैं आपको एक उल्टा बता रही हूँ. आप सोचो अगर सब कुछ ये परमानेंट हो जाता, अगर आपकी 18 साल में उम्र रुक जाती और बढ़ते ही ना, शक्ल बिल्कुल वैसी ही रहती, आपका हस्बैंड भी वैसा ही रहता, बच्चे भी वैसे ही रहते, सब कुछ भी नहीं बदलता, सोचो कितना मुश्किल हो जाती. नहीं, अगर सब कुछ परमानेंट हो जाए, इवन राइट नाउ सोचो, आप कोई भी एक मूवमेंट ले लो जो आपके परफेक्ट मूवमेंट हो, वो परमानेंट हो जाए तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा. So actually, we should enjoy life because it is impermanent, isn't it? एक movie है, हम देखते हैं, वो शुरू होती है और खत्म हो जाती है. सोचो कभी खत्म ही ना हो, चलती जाए, कितनी boring हो जाएगी, है ना? आप किसी को खाना खिलाने के लिए आपने table पे बिठाया है तो obviously आपको पता है थोड़ी देर बाद impermanent है ना, पेट भर जाएगा. सोचो पेट ही ना भरे, खाता ही जाए, आप खिलाते जाओगे. So see, actually there is beauty in impermanence. इतना बुरा नहीं है इम्परमनेंस, बहुत अच्छा है. नेचर जो भी बनाती है, जो प्रकृति ने बनाया है, सोच समझ के बनाया है. हम क्या कर रहे हैं, हम इम्परमनेंस का गलत एस्पेक्ट देख रहे हैं, है ना. हम चाहते हैं कुछ चीज़ें वैसी की वैसी रहें, हम पकड़ के रखें उनको, कुछ चीज़ें बदल जाएं, पर ऐसा नहीं होता, ये लॉज नहीं होते. तो सब कुछ बदलेगा, जो हमें पसंद है वो भी बदलेगा, और अच्छी बात यह है कि जो हमें नहीं पसंद है वो भी बदलेगा। तो लेट्स एंजॉय जो बदल रहा है, है ना। तो जो ज्ञानी है वो पकड़ता नहीं है चीज़ों को, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ इल्यूजरी है, सब कुछ माया है। जैसे कि रस्सी में सांप नज़र आ रहा है, जैसे कि स्काई ब्लू नज़र आ रहा है, हमें आसमान नीला नज़र आ रहा है, है ना? तो रस्सी और सांप में रस्सी क्या है? रस्सी है सेल्फ, और सांप क्या है? संसार। जो सेल्फ है वो हमें संसार के रूप में नज़र आ रहा है, तो हम उसको सेल्फ नहीं देख पा रहे, सिर्फ हम उसका सांप वाला रूप देख पा रहे हैं, वो हमें सांप नज़र आ रहा है, यही हमारा दुख है। फिर एक सवाल आता है कई लोगों का कि इफ़ वन रियलाइजेज द सेल्फ विल द वर्ल्ड डिसअपियर फॉर सच एन एनलाइटेंड बीइंग। अब इसको हम बहुत आसान से, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। देखो, जब हमें पता लगता है कि सामने कुछ मिराज है, मिराज तो हमें पता है ना, जब हमें रेगिस्तान में पानी नज़र आता है, जब हमको पता पड़ जाता है कि झूठ है, क्या वो पानी दिखना बंद हो जाता है? नहीं, दिखता है ना, फिर भी दिखता है। अब हमें पता है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्काई ब्लू नहीं है, ये ब्लू सिर्फ नज़र आ रहा है, पर हमारे पता होने से क्या हमें स्काई ब्लू नज़र आना बंद हो गया? नहीं। तो ऐसे ही सब कुछ वैसा ही चलता है, सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन अब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हो। जैसे आपको रेगिस्तान में पानी नज़र आएगा, दिखेगा तो अभी भी, लेकिन एक बार आपने समझ लिया कि वो इल्यूजन है तो आप उसके पीछे भागोगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि ये संसार भी इल्यूजन है, तो अब आप इसके पीछे भागना बंद कर दोगे। वहां पर वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगा, यहीं पर वैराग्य आ जाता है। फिर वो नेक्स्ट पेज पे मैं आ गई हूँ, 156 पे। वो कहती हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम कितनी बार भी ये स्टेटमेंट सुन लो, लेकिन ये जो तुम्हारा मन है ना, ये उस सत्य को देखने ही नहीं देता तुमको। ये बार बार जो मन है वो फिर से तुम्हें संसार की तरफ ही खींच कर लेके चला जाता है, फिर वही संसार ही रियल नजर आता है। तो कितनी बार भी सुनते रहो। तो फिर उन्होंने कोई भजन गाया है, वही कि हेल्प मी ओ मास्टर दिस म्यूलिश माइंड, है ना, म्यूलिश माइंड, वो क्या बोलते हैं, बैल के जैसा अड़ियल, ये जो मेरा मन है सुनता ही नहीं है मेरा, है ना। सफरिंग इज ओनली एज लॉन्ग एज द माइंड डज नॉट अवेकन टू द रियलिटी। जैसे हम स्वप्न में अगर कोई नाइटमेयर देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, तो कैसे हमारी सफरिंग खत्म होगी? सिर्फ जगने पर ही खत्म होगी ना, जब हम उठ जाएंगे और रियलाइज करेंगे कि अरे ये तो सब झूठ था, ये तो स्वप्न था। तो बिल्कुल ऐसे ही जब तक माइंड भी नहीं जग जाता उस रियलिटी पे, तब तक सफरिंग है। और फिर जब वो अज्ञान मिट जाता है तो सारे डर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि डर किसके साथ है? देखो, सारे के सारे डर इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के ही हैं, मन बुद्धि और शरीर, सारे डर इन्हीं से रिलेटेड हैं, है ना। या तो डर है हमें इस शरीर को कुछ हो जाएगा, या हमें डर है मन को, या मुझे हर्ट हो जाएगा, या बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो सारे के सारे डर इन्हीं के साथ एसोसिएटेड हैं। पर एक बार इफ़ यू गेट फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द कन्विक्शन of being distinct from them, you are become completely fearless. Okay? अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे जब हम यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यू बिकम कम्प्लीटली फियरलेस, तो कोई सोचेगा कि इसका मतलब अगर सपोज कोई ज्ञानी है उसको तुम ट्रक के आगे फेंक दो तो उसको तो कुछ डर नहीं लगना चाहिए, उसके सामने शेर आ जाए तो उसको तो डर नहीं लगना चाहिए, है ना, या उसको उठा के तुम मारो आके पीटो तो उसको तो डर नहीं लगना चाहिए। वो बेवकूफ़ी है। देखो, यहाँ पे जब फियरलेसनेस की बात हो रही है, द फियरलेस इज कि हाँ, आपको पता है कि ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये आपको अंदर से कंप्लीट कन्विक्शन है, लेकिन जब तक आप इस शरीर में रह रहे हो, तो एक बेसिक जो बिल्कुल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, वो डर भी ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज्ञानी अगर रोड क्रॉस कर रहा है और उधर से ट्रक आ रहा है तो वो बोलेगा आने दो, मैं तो चलता रहता हूँ, वो तो वो एक गलत उपयोग हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो बेसिक सर्वाइवल के लिए होती हैं, और कुछ होती हैं उसके बाद जो अननेसेसरी फियर्स हैं। तो यहाँ पे जब फियरलेस की बात होती है तो इसका मतलब होता है जो अननेसेसरी फियर्स जो हैं ही नहीं, जो आपके सिर्फ मन ने बनाए हुए हैं वो डर, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को एक ज़रूरी है ये। फिर उन्होंने आगे बोला है कि कभी कभी ऐसा सब सुनने के बाद कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो मन है वो तो अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत इनएडिक्वेट है। तो उनको लगता है कि अरे ये तो मैंने तो अभी कोई साधना ही नहीं की, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत समय लगेगा, ये पाथ बहुत मुश्किल है। तो वो कह रही हैं ये बिल्कुल डिजेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेशंस किए जा रहे हैं, वो भी ये सेशंस क्यों कर रही हैं, यही मोटिवेट करने के लिए, ताकि तुम समझ लो कि क्या रास्ता है, क्या सही है, कहाँ जाना है। और जब सुना तभी, बोलते ना जब जागो तभी सवेरा, अभी सुन लिया अभी शुरू हो जाओ, अभी अपनी साधना शुरू कर दो, कोई देरी नहीं हुई है। तो कहती है मेरा जो इंटेंशन है वो तुमको परेशान करने का नहीं है, जब बल्कि मोटिवेट करने का है, ताकि तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू कर दो, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम एक बहुत बड़ा संकल्प ले लो, एकदम पक्का संकल्प कि मुझे अब इस रास्ते पर चलना है, मुझे ये जानना है, मुझे अपनी अपने सेल्फ को, अपने आत्मन को, ब्रह्मन को, उसको जानना है, आज ही शुरू हो जाओ, तो वहीं से जर्नी शुरू हो जाएगी। Conquering your own mind is the greatest triumph. इस मन को जीत लेना सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है, और कोई अचीवमेंट उससे बड़ी नहीं होती है। और जब ये सारा कन्फ्यूजन, ये जो सारा फॉग है ना, सारा जो माइंड का, जब ये हटेगा, then the mind will easily abide in calmness and in stillness. अब आगे सबको अच्छा लगेगा, उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। इन्होंने बोला है टेक होम दीज फोर मैसेजेस। अब ये गुरु माने दिए, पहले हमें शंकराचार्य ने बताए थे पहले, है ना, कि आपको एकांत में रहना है, इंद्रियों को वश में रखना है, नियंत्रण में एकाग्र होना है, है ना। और अब यहाँ पर ये क्या बता रही हैं, ये गुरु माँ बता रही हैं कि चार चीज़ें करो तो तुम्हारा आगे भला होगा। क्या? सबसे पहला, लव एवरी वन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ओके, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लव एवरी वन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। अब ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है ना, हम क्योंकि हमारे माइंड की प्रेफरेंसेस हैं ऑब्वियसली। कुछ लोगों को तो हम बहुत आसानी से प्यार कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों से प्यार नहीं कर पाते। अब इसको हम थोड़ा सा ना डीपली समझते हैं कि कौन हमें अच्छे लगते हैं और कौन हमें अच्छे नहीं लगते। तो आप देखोगे, आप अभी खुद एनालाइज करो अपने माइंड में, आप एक इंसान लो जिसके लिए आपको नेचुरली प्यार आता है, और एक इंसान लो जिसके लिए आपको प्यार नहीं आता, या जबकि गुस्सा है आप उसको अवॉइड करना चाहते हो। ओके, दो लोगों को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। अब आप देखो, जो इंसान आपको अच्छा लगता है, जिसपे प्यार आता है, आप देखोगे जो आप उस वो इंसान आपको हेल्प कर रहा है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी डिज़ायर्स होंगी, चाहे वो गुरु भी हो सकता है। गुरु कहाँ से है, देखो, अगर वो गुरु है, आपकी क्या इच्छा है, ज्ञान पाने की इच्छा है, वो ज्ञान किसने दिया, गुरु ने दिया, आपकी इच्छा पूर्ति की ना। वो गुरु क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसने आपकी इच्छा पूर्ति की है, इसीलिए गुरु अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे, चलो आपको अपना हस्बैंड सपोज सोचो कि मुझे मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी इच्छाएं हैं, वो उनको मीट कर रहा है, ठीक है। अब आप दूसरे वाले एग्जांपल में जाओ जो आपको नहीं पसंद, अब आप देखो वहाँ पे वो आपको क्यों नहीं पसंद होंगे, आपकी ज़रूर कोई ना कोई इच्छा रही होगी, और वो इंसान उस इच्छा के बीच में आ गया होगा, उस इंसान की वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, जैसे हो सकता है सपोज आप कंपनी में जॉब करते हो, आपको प्रमोशन चाहिए हो, लेकिन कोई दूसरा आ गया हो, या तो वो बॉस के ज़्यादा पास होगा, या उसने काम आपसे ज़्यादा काम अच्छा करता है, या कोई भी और फैक्टर हो सकता है, उसको प्रमोशन मिल गई, आपको नहीं मिली, अब आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, मेरी डिजायर फुलफिलमेंट में जो भी सामने आ जो बीच में आ जाता है मैं उसको अपना दुश्मन बना लेता हूँ, उससे मैं प्यार नहीं कर पाता। या एक जैसे यू नो कोई मेरे साथ शेयर कर रहा था कि जैसे उन्होंने प्लान बनाया हुआ था बाहर जाने का, अब्रॉड जाना था, तो ऑब्वियसली नो पैसे बचा के रखे थे कि अरे बाहर जाएंगे, बहुत एक्साइटेड थे, पहली बार देवर ट्रैवलिंग अब्रॉड। तभी उसकी मदर इन लॉ बहुत बीमार हो गई, तो ऑब्वियसली वो सारा का सारा पैसा वहाँ पे चला गया। तो अब एक आपने इच्छा बनाई हुई है, वहाँ मदर इन लॉ बीमार हो गई, वहाँ पे वो पैसा लग गया, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में क्या हो गया, अब मदर इन लॉ नहीं पसंद। वो एक देखो कनेक्शन आपका हो गया आपको कि मुझे मदर इन लॉ नहीं पसंद है, यहाँ पे रीज़न। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम मदर इन लॉ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं। तो आप लोग एनालाइज करो, आपको जो जो अच्छा लगता है उसने ज़रूर आपकी कोई इच्छा पूर्ति की होगी, और आपको जो जो नहीं अच्छा लगता वो आपकी इच्छा पूर्ति के रास्ते में आया होगा। तो यहाँ पे कल्प्रिट कौन है, मेरी इच्छा है ना, जो इच्छा आई है। मेरी इच्छा भी कहना असल में गलत है, वेदांत में तो हम मेरी इच्छा भी नहीं बोलते हैं, माया की इच्छा, प्रकृति की इच्छा, क्योंकि मैं तो देखने वाला हूँ इस इच्छा को, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पे जो उन्होंने पहला स्टेप बताया है कि लव एवरी वन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि मैं क्यों दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब अगर मैं अच्छे से ये समझ जाऊँ कि मैं दूसरे को इसलिए प्यार नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी इच्छा की वजह से वो जाने अनजाने, और देखो वो भी अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, जो भी दूसरा आया, सपोज मेरे कलीग को प्रमोशन मिली, वो भी तो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है ना, किसी और की इच्छा पूर्ति हो रही है, उससे मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए मेरे लिए वो परेशानी का कारण बन गया। जैसे हम देखते हैं समुद्र में लहरें उठ रही हैं, एक लहर उठी, अब जब दूसरी लहर उठती है उसके पीछे वो उसको खा जाती है ना, तो उस लहर के अंदर दूसरी वो चली गई, अब उसके लिए तो वो दुश्मन हो गई कि वो लहर वहाँ ले गई, लेकिन कुछ ना कोई इच्छा तो पूर्ति हो रही है, समझ रहे हैं, किसी ना किसी की इच्छा तो पूर्ति हो रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इस पर्टिकुलर जीव की इच्छा पूर्ति नहीं हुई है उस समय, दैट्स इट, लेकिन किसी की तो इच्छा पूर्ति हो रही है ना। तो अगर हम थोड़ा सा इसको वैसे समझेंगे तो हम फिर आराम से दूसरों को इक्वली देख पाएंगे, उन नज़रों से देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं है या जिससे आपको परेशानी होती है आप जाके उनको गले लगा लो, बोलो अरे मैं तो तुझे बड़ा प्यार करती हूँ, मैंने माफ़ किया, नहीं, ये सब बाहरी चीज़ें, हमें कुछ नहीं करना है, इट इज़ ऑल इनसाइड, यू डोंट इवन हैव टू गो एंड टेल द अदर पर्सन इंटरनली। मतलब इसको हम एक और तरीके से ये बोल सकते हैं कि दूसरे के प्रति समभाव रखो, ना इसमें रखो कि मुझे बहुत प्रेम है, ना इसमें रखो कि घृणा है, समभाव, बस नॉर्मल न्यूट्रल रखो। कोई कुछ पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है इस पे?
जब हम किसी से मिलते हैं, मतलब हम उनको जानते भी नहीं है, बट स्टिल हम एक ओपिनियन तो फॉर्म कर लेते हैं ना,
बिल्कुल,
एंड एक लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है, या सो उसमें भी इच्छा है स्टेइंग अवे।
हाँ देखो, नहीं बहुत अच्छी चीज पूछी शिवानी आपने, वो होना ही है। देखो हमारा जो माइंड है वो सर्वाइवल के लिए बना है, ठीक है, जो हमारे बॉडी का एक बॉडी और माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर्वाइवल। सर्वाइवल किसका? सर्वाइवल ऑफ दिस मैकेनिज्म, जो बॉडी माइंड मैकेनिज्म है इसको सर्वाइव करने का। तो हर समय प्रकृति ने हमें ये एक गुण दिया है, एक सिद्धि दी है कि हम जब भी मिलते हैं हमारा माइंड जज करता है। वो जज क्यों करता है कि क्या मैं सेफ हूँ, सिक्योरिटी है ना। जब हम किसी दूसरे को भी कर रहे हैं, अगर हमें नेगेटिविटी फील होती है, नेगेटिविटी का क्या मतलब है कि मेरे लिए ये सही नहीं है, है ना, मैं सेफ नहीं हूँ या तो इस माहौल में या इस लोगों के साथ ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आप उसको करो और आप उससे माहौल से दूर हो जाओ, क्योंकि ये जो बॉडी माइंड है इसका एक स्ट्रक्चर है। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर में के पास में आएगा, और ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, सबके गुण धर्म अलग हैं, तो प्रॉब्लम्स आनी ही हैं, किसी के साथ बनेगी किसी के साथ नहीं बनेगी। मैं एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो हमारे घर में फ्रीज़र में आइस क्यूब्स भी हैं और हमारे घर में गैस भी है जिसमें आग जलती है, ठीक है। अगर आप आइस क्यूब निकाल के गैस की आग के पास ले जाओ तो क्या होगा? पिघल जाएगी, है ना, पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि आइस क्यूब का एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म है, एक शेप है, एक उसका गुणधर्म है और आग का भी एक गुणधर्म है, उन दोनों को अलग ही रखना है। अगर हम नहीं चाहते कि आइस क्यूब पिघले तो हम उसको गैस के पास नहीं लेके जाएंगे, है ना। या बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें लिखा होता है स्टोर इन अ कूल प्लेस, लिखा होता है ना, तो अगर हम अगर कहीं और रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे क्योंकि उनका गुणधर्म है। ऐसे ही हम सबका जो शरीर है और हम सबका जो मन है उसके कुछ गुणधर्म है, तो वो किन लोगों के साथ सेफ और कंफर्टेबल, अगर मैं आइस हूँ तो मैं आइस क्यूब्स के साथ ही रहूँगी तो मेरा ये बना रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ जाती हूँ जो ज़्यादा हीटेड है, वहाँ पे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, मतलब मेरा स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर वो अटैक हो रहा है, वो डिफेंड, वो अपने आप को डिफेंड करेगा। मे बी आई एम गेटिंग टू मच इनटू इट। तो ये जजमेंट्स आएंगे, नो दीज जजमेंट्स। इट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू लव द पर्सन और हेट द पर्सन, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है। इट डज नॉट ऑल्सो मीन कि अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप जजमेंट कर रहे हो कि आपको उसके साथ प्यार करना है, मिलना है, करना है, इट इज़ अबाउट जस्ट नोइंग कि दिस इज हाउ इट इज, बट यू नीड नॉट हैव एनी इमोशंस अराउंड इट। इज दिस मेकिंग सेंस? ये तो बताओ।
बेसिकली दैट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग विल बी दैट एक्सटर्नली, बट इंटरनली यू आर बेसिकली कि मतलब एक सेम उसमें कि नहीं, लाइक एवरीबॉडी इज सेम।
It is very natural also. Liking and disliking is very natural.
Yeah.
Naturally,
ये सब चीजें ना मेरे संग रिसेंटली हुई है, so that's why this question is coming up.
तो वो जो जजमेंट्स हैं, वो जो प्रेफरेंसेस हैं माइंड के रहेंगे ही, है ना। अब पता है सब कुछ एक है, सब कुछ एक जैसा होता है। अब मैं जैसे मैंने बचपन से कभी नॉनवेज नहीं खाया, अब मुझे कोई बोले अच्छा सब एक है तुम अब नॉनवेज खा लो, तो मैं नॉनवेज थोड़ी खाने बैठ जाऊंगी। जो चीज़ मुझे नहीं खाती वो नहीं खाऊंगी ना आज भी, क्योंकि ये जो बॉडी है और ये जो माइंड है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसके एक अपनी पसंद है, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बदल जाएंगी सडनली। ऐसे ही आपको कुछ लोग, जैसे मैंने बोला, कुछ लोग आपको पसंद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। नो दिस इज हाउ इट इज। और एज ए सीकर हम हमेशा, मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जिनके साथ आपका नहीं हो रहा आप उनसे अलग रहिए, दूर रहिए, अवॉइड करिए। इट डज नॉट मीन कि आपको सबके साथ रहना है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से उनको कुछ हेट या वो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो दैट दिस इज हाउ इट इज, दैट्स इट। सब अपनी अपनी जगह से है।
Tendency of love, like obviously जिनको तुम like करते हो उनको you start loving those people, and जिनको तुम नहीं like करते हो तो automatically a kind of not hatred but it's a strong word but like एक वो form हो जाता है कि obviously you do not like that person so you don't want to be there.
बिल्कुल,
तो वो love और hatred तो form हो जाता है।
हाँ, वो भी हो जाता है, mind में ये रहेगा। पर मैं उसके पीछे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि लव पे भी वो मत जाओ, क्योंकि लव भी बड़ा डिस्टॉर्टेड वर्ड है एक्चुअली। गो टू न्यूट्रैलिटी, कि न्यूट्रल रहो, कि नोइंग कि दिस इज हाउ माइंड इज, ये माइंड कर रहा है लव और हेट का जो चल रहा है, बट लेट मी बी न्यूट्रल अबाउट इट। इक्वानिमिटी कि ठीक है। अर्चना जी कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए।
आपकी ये वाली बात हमेशा से बहुत हेल्पफुल रही है चीजों में, कि जो जिससे आपको लाइकिंग नहीं है या आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे हेट्रेड नहीं करनी, उसकी भी अपनी एक स्पेस है, वो भी राइट है, बट आपसे बस मैच नहीं हो रहा, आपसे ट्यून नहीं हो रहा, इसलिए उससे आप थोड़ा सा अपना डिस्टेंस कर लीजिए। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल, ये बहुत ही अच्छी चीज है एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए। दिस इज वेरी गुड टिप, बहुत अच्छी।
चलिए, बहुत अच्छा है अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कहीं ना हम कभी कभी सोचने लगते हैं अरे मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, दूसरे लोग भी बोलेंगे आपको तो सबके साथ रहना चाहिए, आपको तो हर एक के साथ बननी चाहिए, है ना। आपको भी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है दिमाग में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज नथिंग टू डू विद बीइंग स्पिरिचुअल, प्लीज। ये हमको वी हैव टू डिफ्रेंशिएट कहाँ पे बॉडी माइंड की चीज आ रही है, कहाँ पे स्पिरिट आ रहा है। स्पिरिचुअल सिर्फ अपने को जानना है कि आप ऑब्जर्वर हो, बाकी जो बॉडी माइंड की प्रेफरेंसेस है वो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
बट ये लव एंड हेट्रेड भी तो बॉडी ही कर रही है ना, तो
माइंड कर रहा है।
माइंड
कर रहा है,
ये भी इसलिए है ना एक्चुअली, क्योंकि हम इस माया, इस प्रकृति में रहते हैं और यहाँ दिस इज बेस्ड ऑन डुअलिटी. अगर लव है तो हेट्रेड है ही है, खुशी है तो गम है ही है.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
किसी को अगर बहुत प्रेम कर रहे हो तो कहीं पर आपको नहीं भी प्रेम है.
अब प्रेम वही नहीं है, वही जो अभी मोनिका ने बताया कि
हाँ हाँ म्यूटेड
म्यूट हो गए
अर्चना जी. चीज गलत हो जाती है, मतलब अगर आपकी इच्छा पूर्ति आपके शौक में अगर सब लोग साथ में हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है. फिर वही
एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है.
हाँ, एक्सपेक्टेशन क्या, वो जो अट्यून नहीं, जो जो आपकी जैसा है और आपके साथ है, आपकी लाइकिंग में है, आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक है, वो तो सब अच्छा. और जहाँ भी इच्छा पूर्ति में बाधा हुई बस वहीं पे सारी चीजें अराइज हो जाती हैं.
हमेशा ऐसा नहीं है, कभी 10 किसी ने आपके साथ अच्छा ही करी 10 बार, और एक बार अगर किसी ने अच्छा नहीं किया ना तो हेट्रेड में डाल देंगे.
और ये भी पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं. देखो मन का भी कैसा होता है, जैसे सपोज जैसे रेनू ने भी बोला 10 लो चीज, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है किसी ने मेरे लिए 10 चीजें की जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी. ओके, उसको लगा उसने मेरे लिए ये 10 चीजें की है, लेकिन उसने वो जो एक चीज मेरे लिए नहीं की जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी,
इम्पोर्टेंट थी,
तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी. लेकिन मेरा मन कैसे उस चीज को जज करेगा कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी वो एक चीज नहीं की, 10 बाकी कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है ना. और उसको लगेगा अरे मैंने 10 चीजें इसके लिए की, एक नहीं की. तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे. देखो ये सब चीज, तो अध्यात्म में सबसे सही जो चीज होती है वो यही होती है. और मैं फिर से बता रही हूँ, अर्चना जी ने फिर से थैंक यू वो कर दिया रिपीट, कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें सबको प्यार करना है. यहाँ पे डिफरेंस समझो, जो गुरु माँ यहाँ पे बोलना चाह रही है, मैंने इसीलिए इस चीज को उठाया, एकदम से बंद नहीं किया, कि सबको प्यार करो. यहाँ पे प्यार को समझो, इट इज अबाउट जस्ट बीइंग न्यूट्रल, कि हाँ सब ठीक है, इसको न्यूट्रल, इसको प्यार
भी. दिस इज मोर द लव जो हम यूनिफाइड में करते हैं, दैट यूनिवर्सल लव.
यस, यूनिवर्सल लव, एब्सोल्युटली. नॉट द लव ऑफ द माइंड. माइंड कर ही नहीं सकता, माइंड सबको पसंद कर ही नहीं सकता. माइंड खुद को ही हमेशा पसंद नहीं करता है कि नहीं,
बस
दूसरों को क्या करेगा. अंशु भाभी आप कुछ बोल रहे थे.
हां जी दीदी, मैं कह रही थी शायद वाइब्स अपने आप आ जाती है हमें, है ना.
क्या जाती है?
सामने वाले से खुद किस अंदर से वाइब सही हो, पॉजिटिव लेवल की हो, तो अगर सामने वाला नेगेटिव भी हो फिर भी इफेक्ट नहीं होते.
हाँ, कभी होते हैं कभी नहीं होते, डिपेंड करता है. कभी कभी जब नेगेटिव होते हैं तो हम ठीक है, उस समय अगर उनसे व्यवहार कर भी लेंगे, पर हमें पता है कि हमें इनसे दूरी बना के रखनी है. क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है कि जितना हम उनसे मिलेंगे फिर हमें आपको हम भी डिफेंसिव में आ जाते हैं. हमारी बॉडी और माइंड को इसको प्रोटेक्ट करना है, उसका ये भी एक काम है कि इस बॉडी माइंड को उसे प्रोटेक्ट करके रखना है. तो कई लोगों के सामने साथ जब हम होते हैं तो हम काफी कॉन्शियस होते हैं, नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं. हाँ, तो वो जरूरी होता है करना, तो इसलिए इनको कंफ्यूज मत करो. यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल याद रखो, फॉरगेट लव, कीप इट न्यूट्रल रहना है, सबके साथ न्यूट्रल ही सही होता है. दूसरा उन्होंने बोला है, डू सम ऑल्ट्रुइस्टिक सर्विस एवरी डे, रोज कुछ ना कुछ दूसरों के लिए जरूर करो. और अगर तुम्हें ऐसा मौका मिलता है किसी मास्टर को, किसी योगी को, महात्मा को सर्व करने का, तो पूरी तरह से करो, तन मन और धन तीनों लगाकर करो. ये दूसरी चीज. तीसरा उन्होंने बोला है कि कभी भी दूसरे के पास जो है, चाहे उसके पास पैसा है, चाहे पोजीशन है, चाहे स्टेटस है, चाहे ज्ञान है, प्यार है, सुंदरता है, दूसरे के पास कुछ भी हो, कभी उसको ये कोशिश मत करो कि मुझे वो मिल जाए. मतलब एक नेगेटिव वे में, एक होता है आप इंस्पायर होके होते हो, है ना, कि हम भी उनके जैसे हो जाएं, एक पॉजिटिव वे में होता है, और एक नेगेटिव कि अरे उसके पास है ना, उसका मुझे चाहिए या उसको क्यों मिला. ये कभी नहीं करना है बिल्कुल भी. बी हैप्पी फॉर देम, उनके लिए आप खुश ही हो, उनके पास जो भी हो उनके लिए खुश हो, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए खुश होने के लिए, ये हमने किया था ना पिछली बार, याद है कि कैसे बाहर के ऑब्जेक्ट्स हमें खुशी नहीं दे सकते, याद है ना सबको, कि क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट सबको खुश नहीं करता, एक ऑब्जेक्ट की खुशी हमेशा नहीं रहती, एंड सो ऑन, राइट। तो ऑब्जेक्ट से तो खुशी मिलती नहीं है, तो दूसरे के पास जो भी चीज़ हो वो ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, चाहे पोजेशंस हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे फेम हो, चाहे पावर हो, चाहे नॉलेज हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो उसके पीछे हमें कोवेटनेस, इसको कोवेटनेस भी बोलते हैं ना, कोवेटसनेस, यू शुड नॉट कोवेट, जो हम बोलते हैं ना यम नियम, तो जो यम नियम में एक चीज़ आती है डू नॉट स्टील। तो एक बार मैं श्री एम का सुन रही थी और शायद मैंने एक बार ये पहले भी बताया था, तो जब उन्होंने बोला था कि चोरी, हम क्या सोचते हैं कि अगर मैंने किसी की कोई चीज़ उठा ली वो चोरी होती है, तो वो तो हम बड़े क्लियर है कि हमने कभी किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं की, है ना, हम लोग सब सोचेंगे नहीं नहीं हमने तो कभी कोई चोरी नहीं की। वो कहते हैं सिर्फ चोरी वही नहीं होती है, लेकिन तुम मेंटली भी अगर किसी जो दूसरे के पास है तुमको लगता है नहीं ये तो मेरे पास होना चाहिए था, वो भी चोरी है। और हमारे यहाँ हम यहाँ पर चोरी पे बहुत वो मेंटल चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना, फिजिकल पे इतना नहीं है अध्यात्म में, जितना आपका मेंटली आप कैसे सोचते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और चौथी चीज़ इन्होंने क्या बोला है, बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जो भी आपने मार्ग चुना है, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, योग निद्रा हो, मंत्र चैंटिंग हो, सेल्फ स्टडी हो, उसमें आपको कोई कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो पहला, आप न्यूट्रल रहिए, मैं लव वर्ड हटा देती हूँ, न्यूट्रल रहिए, जानिए कि माइंड के प्रेफरेंसेस हैं, जानिए हमें क्यों क्यों हमारा माइंड किसी को पसंद करता है और क्यों नहीं करता, वो हम समझ गए हैं ना, हमारी ही डिज़ायर की वजह से। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको मौका मिले तो मास्टर योगी महात्मा को सर्व करिए। तीसरा, किसी दूसरे के पास जो है उससे आप खुश होइए, उसको पाने की कोशिश मत करिए नेगेटिव वे में, जेलस मत होइए। और चौथा, अपनी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हो उसको लगातार करिए। और ये कहते हैं कि अगर तुम ये चारों चीज़ें फेथफुली करोगे, और ये करनी ज़्यादा आसान है ना, जो शंकराचार्य जी ने बताई है उससे ये कहीं ज़्यादा आसान है, ये हमारे हाथ में है फिर भी तो तुम्हें ज़रूर अपने इसका जो तुम काम करोगे इसका फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने जैसे योग निद्रा का फिर से बताया, गुरुमा बताती हैं, अभी तो मैंने भी एक डाल दी है, जैसे जो लोग जो क्रिया योग नहीं करते हो या और कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ओके, अगर आप योग निद्रा भी रोज़ 6 महीने करते हो, आपको बहुत 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 असर मिलेगा उस चीज़ का। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड प्रैक्टिस और बहुत ही आसान है, कितनी आसान है, आप दूसरों को भी दे सकते हो, और गुरु माँ का भी है योग निद्रा उसमें, तो वो जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैंने खुद 3 महीने लगातार की है और उस समय बहुत ज़्यादा चेंज आया था, बहुत ज़्यादा। मैंने तो खैर क्रिया योग के साथ ही की थी, तो मैं बता रही हूँ, सिर्फ आप योग निद्रा भी करते हो वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है करने के लिए। लेकिन कोई भी साधना अगर लो तो कम से कम 3 से 6 महीना ज़रूर करिए, ठीक है ना। जैसे इन्होंने ये भी बताया था, ये वाली जो है कि ये शरीर कर रहा है, ये शरीर खा रहा है, ये मन परेशान हो रहा है, ये भी आपको 3 से 6 महीना करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ 2-4-5 दिन कर ली, लगातार कोई भी ध्यान लीजिए 3 से 6 महीना कम से कम। तो ये जो साधना है उसका ही फल जो है वो मिलेगा, वहाँ पे ये बता रही हैं। तो एक अ बॉडी एंड अ माइंड दैट हैज मैच्योर्ड इन द फायर ऑफ ऑस्टेरिटीज इज सो रेडिएंट, सो वाइटलाइज्ड, है ना। तभी जब हम गुरु को देखते हैं, योगी को देखते हैं, मिलते हैं, क्यों उनकी बातों में इतना हमें नज़र आता है, क्यों हम उनसे प्रभावित होते हैं, क्यों, क्योंकि वो साधना से, वो तप से, वो जो उनका जो निखरा है, जो मन साफ हुआ है, जो मन शुद्ध हुआ है, जो शरीर निखरा है, उसी की वजह से होता है। फिर अच्छा, एक और इन्होंने चीज़, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं इसमें ही बता देती हूँ कि वो कहते हैं क्यों हम एक मास्टर को अपना सर झुकाते हैं, उसका जो हमारा भाव है वो ये होता है कि ओ मास्टर, जो मेरी बुद्धि है वो तो बहुत कम है, है ना, तो मेरी सिर्फ जो मेरी होप है वो आपकी ग्रेस में, आपके ही ब्लेसिंग में, उसी में ही है, मुझे ब्लेस कर दीजिए ताकि मेरी बुद्धि भी आपके जैसी प्रज्ञावान हो जाए और ताकि मैं समझ पाऊँ आपके शब्दों को और मैं भी स्पिरिचुअल हो पाऊँ, ट्रेड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और फिर वो कहती हैं कि माइंड यू इसमें भी एक डेकोरम होता है, तो ज़रूर ऐसा होता होगा कि गुरुमा चल रही होंगी, कुछ लोग आके उनके पैर ही खींच रहे होते होंगे, वो कह रही है पैर छूने के लिए, ये नहीं कि तुम पैर पकड़ के खींचने लगो गुरु के, है ना, तो लोग करते हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि हमें टच करना है, टच करना बड़ा ज़रूरी है, टच करने से ही ब्लेसिंग होगी। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि गुरु के आगे तुम सिर्फ प्रेम से भक्ति से जब सर झुकाते हो वो इनफ है। जैसे वाईफाई में हमें पता है कि टच करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, सिर्फ अगर तुम्हारा कनेक्शन है तो कनेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही गुरु की ब्लेसिंग के लिए गुरु को छूने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए बस। नो सूनर डज द माइंड गेट्स प्योरिफाइड यू गेट ड्रेंच्ड इन द शावर ऑफ ग्रेस, यू गेट ड्रेंच्ड इन द शावर ऑफ ज्ञान। और फिर जैसे जैसे मन साफ होता जाता है तो हमारी जो इंट्यूशन है वो हमारी बढ़ने लगती है। ये तो ऑलरेडी सबका यहाँ पे अनुभव हो रहा होगा, इंट्यूशन बढ़ती है और आपके जो जवाब हैं वो अपने आप ही आने लगते हैं। या कभी किसी किताब से, कभी किसी और से, कभी कोई भजन सुना उससे, कभी किसी प्रवचन में, या फिर स्वप्न में, या फिर अपने आप ही आने लग जाते हैं। आप सवाल सोचते हो या क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने आप आपको रास्ता नज़र आने लगता है। जैसे जब हमारे पास दो आँखें हैं, मैं बोलती हूँ मुझे पता है मुझे यहाँ पे टटोलना नहीं है, मुझे दरवाज़ा सामने नज़र आ रहा है, अगर मुझे इस कमरे से बाहर जाना है मैं सीधा उस दरवाजे से बाहर जाऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही हमें क्या डिसीजंस लेना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ सोचना नहीं पड़ता, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप रास्ता नज़र आता है, अपने आप क्लियर होता है ये करना है और ये नहीं करना, ख़त्म। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे वो लव की बात कर रही हैं। लव बाइंड्स योर माइंड विद द गुरुज, द कॉर्ड इज इनविजिबल बट वेरी पावरफुल, सप्लीमेंट दिस लव विद रेगुलर लिसनिंग, रेगुलर कॉन्टेम्पलेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, जॉब डन। तो गुरु के साथ अगर आपके वो कॉर्ड लगी हुई है तो बिल्कुल वो वाईफाई जैसा कनेक्शन है और उससे ज्ञान ट्रांसमिट हो ही जाएगा। और है तो ज्ञान ही, देखो एक्चुअल गुरु तो ज्ञान ही है, लेकिन जब तक अपने अंदर का ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक एक बाहर, क्योंकि हम इस शरीर में हैं तो एक और शरीर लगता है उस ज्ञान को ट्रांसमिट करने के लिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल।